दोस्तों, अगले दिन रागिनी ने मुझे सुबह 7 बजे उठाया और बोली, तैयार हो जा, घर चलना है। तो मैं उठकर तैयार हो गई। बाहर आंटी ने हमारे लिए नाश्ता लगा दिया था। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और इस तरह एक हफ्ता बीत गया दोस्तों। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एक दिन सुबह 10 बजे भैया का फोन दादी के फोन पर आया। उन्होंने कहा कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो दादी को जाना पड़ा। दादी ने मुझे अपने साथ चलने के लिए बोला, क्योंकि घर में किसी एक का रुकना जरूरी था और क्योंकि वो 3 या 4 दिन के लिए जा रही थी। अब इस बात पे रागिनी जाने की जिद करने लगी और रोने लगी, तो दादी ने मुझे ना जाने के लिए मना किया और बोली, अकेली मत रुकना, रात को किसी सहेली को बुला लेना। इतना कहते हुए वो रुक गई और बोली, सहेली को रहने दो, मैं साहिल के घर फ़ोन करके बोलती हूँ, वो साहिल को कुछ दिन के लिए भेज दें जब तक हम नहीं आते, क्योंकि वो सही लड़का है और तुम्हारी सारी सहेलियाँ बेकार। अब मुझे भी अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि साहिल हमारे घर आकर रुकेगा। तो दादी ने साहिल की माँ को फ़ोन करके बोला कि वो साहिल को कुछ दिन के लिए हमारे घर भेज दे, जिस पे साहिल की माँ ने कहा, ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम साहिल को भेज देंगे। वो दोनों 1 घंटे बाद चली गई और मैं घर का काम करने लगी। खाना खाकर मैं सो गई। 3:30 बजे साहिल का फोन आया, दरवाज़ा खोलो नीचे आकर। तो मैं तुरंत नीचे गई और वो ऊपर आ गया। अब पहले तो मैंने उसको पीने को पानी दिया। उसके बाद वो मेरी मम्मी के बारे में पूछने लगा कि क्या हुआ है। दोस्तों, थोड़ी बातचीत के बाद मैंने उससे पूछा, खाना खा लो, तो उसने कहा, मैं खा कर आया हूँ। मैंने टीवी ऑन कर दिया और हम देखने लगे। कुछ देर के बाद लाइट चली गई दोस्तों, तो एसी बंद हो गया और कमरे में बहुत गर्मी हो गई। तो साहिल ने अपनी टी शर्ट उतार दी और दूसरे कमरे में जाकर एक छोटी सी शॉर्ट्स पहन ली, जिसमें उसका काला नाग पेंडुलम की तरह हिलता साफ दिख रहा था। थोड़ा टाइम बीता तो मेरी एक सहेली का फोन आया। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ हो। अब दोस्तों, मेरे मुंह से निकल गया कि दादी और रागिनी घर से बाहर गए हैं और मैं अकेली हूँ। उसने कहा, ठीक है, फिर तो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। शिट यार, अब मैं उसको मना भी नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह फंस गई थी, क्योंकि साहिल तो था और डर इसका नहीं था कि मुझे मैंने झूठ बोला है, बल्कि अगर वो साहिल को देख लेती तो वो एक बहुत बड़ी चुदक्कड़ लौंडिया है, हमेशा चूत चुदाई की बातें करती है और लड़की बहुत बड़ी भूखी है। अगर वो साहिल को देख लेती तो बिना उससे चुदेर नहीं रहती। साहिल है ही इतना स्मार्ट, ऊपर से उसका लौड़ा भी इतना शानदार है यार, कि अगर वो सड़क पर नंगा होकर चले ना, तो बहुत सी लड़कियां वहीं सड़क पर उससे चुदवा लें। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि साहिल उसे चुदेगा, बस तो किसका था क्या, मैं साहिल से प्यार करने लगी थी और अब अपना प्यार किसी से चुदे या किसी और को चुदे, दुख तो होता है ना। पर खैर, अब कुछ कर नहीं सकते थे। दोस्तों, आप ये कहानी freesixkahani.com पर सुन रहे हैं। कुछ देर बाद साहिल वहीं आंगन में चटाई बिछाकर केवल शॉर्ट्स में एक्सरसाइज करने लगा। मैं चुपके से टीवी देखने के बहाने उसे छुप कर देख रही थी। तब तक मेरी सहेली, जिसका नाम राजसी है, उसका कॉल आया कि वो मेरे घर के नीचे खड़ी है। मैं नीचे गई और उसको साथ लेकर जैसे ही ऊपर आई, उसकी नज़र साहिल पर पड़ी। उसने बहुत वासना भरी नज़र से साहिल के पूरे जिस्म को निहारा। एक्सरसाइज करते समय साहिल का लंड भी अलग से साफ साफ दिख रहा था, जिसे राजसी ने देखा और वो कमरे में आ गई। फिर मैं उसके लिए पानी लेकर आई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बगल में घसीट लिया और बोली, तू तो बोल रही थी कि अकेली हूँ, अब ये मस्त लौंडा कौन है? मैंने राजसी को बताया कि ये मेरे एक रिश्तेदार का लड़का है। फिर मैंने झूठ बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि दादी ने उसको बोल दिया था घर रुकने को, ये बस अभी 5 मिनट पहले आया है। तो वो बोली, ये बता, इसने तेरी लिया नहीं अब तक? जिस पे मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसको बोला, पागल है क्या, ये मेरे घर का है। तो वो बोली, फिर ठीक है, तेरे घर का है, मेरे तो नहीं, मेरी सेटिंग करवा दे यार। मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ यार जाने दे, कोई प्रॉब्लम हो गई तो घर वाले मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने बहुत रोका उसे, तो लास्ट में उसने बोला, ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने ये बात तेरे घर पर नहीं बोली कि तू मेरे साथ दारू पीती है, और जब भी तुझे कोई हेल्प चाहिए होती है मैं ही तेरा साथ देती हूँ, लेकिन आज तुझे मेरी कसम है तो मुझे इससे चुदने से नहीं रोकेगी। अब दोस्तों मैं क्या ही बोल सकती थी इस कसम के आगे। तो उसने एक प्लान बनाया कि मैं 6 बजे तक मार्केट चली जाऊं, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सिर्फ राजसी का नाम आएगा, मेरा नहीं। फिर वो साहिल से बहुत जल्दी फ्रैंक हो गई और उससे बातें करने लगी। जब 6 बजे तो मैंने बोला साहिल से, मैं मार्केट जा रही हूँ, अभी कुछ देर में आऊँगी। तो उसने कहा, ठीक है। मैं तैयार होकर नीचे उतरी और चैनल खोला, लेकिन मैं बाहर नहीं गई। अंधेरा हो चुका था, मैं चुपके से छत पे चली गई, जहाँ से नीचे का पूरा नज़ारा साफ दिखता है। राजसी ने पहले तो साहिल से इधर उधर की बातें की और कुछ देर बाद लाइट चली गई तो फिर गर्मी हो गई। तो राजसी बोली, बहुत गर्मी है यार, मैं नहा लूँ जाकर। साहिल ने कहा, ठीक है। अब राजसी इतनी बड़ी रंडी है कि उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके, जिसके पीछे की तरफ साहिल बैठा था, पहले अपनी टॉप उतारी और फिर ब्रा उतार कर बाथरूम में चली गई। भाई इधर साहिल का तो माहौल बन गया था। वो उठा और राजसी की ब्रा और टॉप को उठाकर सूखने लगा। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, राजसी का रंग बिल्कुल मेरे उल्टा है, मतलब वो बहुत गोरी है और उसका भरा भरा बदन है। उसकी चुच्चियाँ दबवा दबवा कर मसलवा कर 32 इंच की हो गई और उसे गांड मरवाने का भी बहुत शौक था, लेकिन अब तक उसको उसकी पसंद का लंड नहीं मिला था। उसकी पसंद का लंड साहिल के पास था, लेकिन वो गांड पे चांटे भी बहुत मरवाती थी, जिससे उसकी गांड भी बहुत सूजी थी और 34 इंच की, और उसकी उम्र 23 साल। तो अब साहिल उसके कपड़े सूंघ कर उसका फीलिंग ले रहा था। तभी राजसी ने बाथरूम से आवाज लगाई, साहिल तौलिया दे दो, मैं भूल गई हूँ। मुझे पता था वो हरामन जान बूझ कर बोली थी। तो अब साहिल ने तौलिया लिया और बात